अध्याय 3 चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चंद्रगुप्त प्रथम ही सर्वप्रथम गुप्त सम्राट था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसी के समय गुप्त राज्य एक स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ताधारी राज्य बना। लिच्छवियों से विवाह संबंध, ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना उसका लिच्छवी वंशीया कुमार देवी से विवाह था। गुप्त अभिलेख बड़े अभिमान से उसके पुत्र समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। इस विवाह की पुष्टि चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की एक स्वर्ण मुद्रा से भी होती है। इस मुद्रा के अग्रभाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र एवं नाम है तथा पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी का चित्र है और लिच्छव्यः लिखा हुआ है। इस विवाह के संबंध में कई प्रश्न उभरते हैं। पहला, लिच्छवी राज्य कहाँ था? दूसरा, इस विवाह का क्या महत्व था? तीसरा, चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली मुद्रा का क्या महत्व था? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस समय लिच्छवी कहाँ राज्य कर रहे थे। कुछ विद्वानों का मत है कि वे नेपाल में राज्य कर रहे थे, परंतु यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि एक और तो अभिमान पूर्वक समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाए और गुप्त मुद्रा पर लिच्छवी लिखवा कर गुप्त लिच्छवी संबंध की महत्ता प्रकट की जाए और दूसरी ओर प्रयाग प्रशस्ति में वही लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त नेपाल को करत के रूप में प्रदर्शित करे। अन्य विद्वान लिच्छवियों को पाटलिपुत्र का शासक मानते हैं, परंतु एलन महोदय पाटलिपुत्र को गुप्त के समय से ही गुप्त राज्य में मानते हैं। डॉक्टर मजूमदार वैशाली को लिच्छवी राज्य बताते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवी कुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करने का परिणाम यह हुआ कि वैशाली का राज्य भी गुप्त राज्य में मिल गया। यह मत सबसे अधिक ग्राह्य प्रतीत होता है। स्पष्टतया चंद्रगुप्त प्रथम ने यह विवाह राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया था। वैशाली राज्य के गुप्त राज्य में मिल जाने से चंद्रगुप्त प्रथम की शक्ति बहुत बढ़ गई। संभव है कि इसी के पश्चात उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की हो और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हो। एलन महोदय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली मुद्रा का निर्माण समुद्रगुप्त ने अपने माता पिता के ऐतिहासिक विवाह की स्मृति में निर्मित कराया था, परंतु यदि ऐसा होता तो इस मुद्रा पर उसके निर्माणकर्ता समुद्रगुप्त का भी नाम होता। एलन के मत के विरुद्ध डॉट अल्टेकर का मत अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है। वे इस मुद्रा को चंद्रगुप्त और कुमार देवी की सम्मिलित मुद्रा बताते हैं और कहते हैं कि लिच्छवियों ने सम्मिलित राज्य पर अपनी राजकुमारी कुमार देवी के समानाधिकार को सुरक्षित रखा था। कुमार देवी गुप्त नरेश की पत्नी होने के ही कारण नहीं, वरन लिच्छवी कुमारी होने के कारण भी सम्मिलित राज्य की अधिकार थी। गुप्त संवत अलबरूनी का कथन है कि गुप्त संवत की स्थापना शक संवत के 241 वर्ष पश्चात हुई थी। इसी आधार पर डॉक्टर फिल्ट ने यह मत प्रतिपादित किया था कि गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। नालंदा और गया में समुद्रगुप्त के दो ताम्रपत्र मिले हैं जिन पर क्रमशः 5 और 9 गुप्त संवत की तिथियां हैं। अधिकांश विद्वान इन दोनों ताम्रपत्रों को जाली मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान 5 गुप्त संवत के नालंदा ताम्रपत्र को वास्तविक राजकीय लेख मानते हैं। यदि यह मत स्वीकार कर लिया जाए तो फिर यह भी संभावना हो जाती है कि गुप्त संवत की स्थापना समुद्रगुप्त ने ही की हो। कौमुदी महोत्सव यह एक संस्कृत नाटक है जिसके लेखक का अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके कथानक के अनुसार मगध में सुंदर वर्मा नामक एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र न था, अतः उसने चंडसेन नामक एक बालक को गोद ले लिया। कुछ समय पश्चात सुंदर वर्मा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम कल्याण वर्मा रखा गया। बड़े होने पर चंडसेन ने मगध कुल के वैरी मलेच्छ लिच्छवियों की सहायता से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और सुंदर वर्मा को मार डाला। इस प्रकार चंडसेन मगध का राजा बन बैठा। राजमंत्री मंत्रगुप्त की सहायता से सुंदर वर्मा का पुत्र कल्याण वर्मा अपनी प्राण रक्षा के लिए भागकर वन में रहने लगा। कुछ समय पश्चात मंत्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में चंडसेन के विरुद्ध विद्रोह करा दिया। इस विद्रोह में चंडसेन अपने वंश सहित मारा गया। अब कल्याण वर्मा मगध का राजा बना। उसने मथुरा नरेश यादव वंशी कीर्तिसेन की कन्या कीर्तिमती के साथ विवाह किया। इस विवाह के उपलक्ष्य में कौमुदी महोत्सव मनाया गया। डॉक्टर जायसवाल का समीकरण। डॉक्टर जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव के कथानक को ऐतिहासिक माना है। वे कहते हैं कि चंडसेन वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम था। कौमुदी महोत्सव का कथन है कि चंद्रसेन ने लिच्छवियों के साथ संबंध किया था, और उधर गुप्त अभिलेखों एवं चंद्रगुप्त कुमार देवी मुद्रा से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यही नहीं, डॉक्टर जसवाल आगे कहते हैं कि सुंदर वर्मा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कल्याण वर्मा ने भागकर वाकाटक नरेश प्रवरसेन के राज्य में शरण ली थी। सम्राट प्रवरसेन ने उसकी सहायता करते हुए चंद्रसेन पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। इस प्रकार मगध पर वाकाटक वंश का अधिकार हो गया। स्वयं चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त भी प्रारंभ में वाकाटकों के अधीन सामंत रहा। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने अपनी व्याघ्र शैली की मुद्रा पर वाकाटक वंश के राज चिन्ह गंगा का चित्र खुदवाया और एकमात्र अधीनता सूचक राजा की उपाधि धारण की। कालांतर में समुद्रगुप्त ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम को आर्यावर्त के युद्ध में हरा कर अपनी स्वतंत्रता घोषित की। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के राजाओं में एक राजा रुद्रदेव था। डॉक्टर जसवाल ने इसका समीकरण वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम के साथ किया है। डॉक्टर जसवाल के मत का खंडन, परंतु डॉक्टर जसवाल के मत का निम्नलिखित आधारों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहला, चंद्रसेन और गुप्त चंद्रगुप्त के नामों में मौलिक अंतर है। प्राकृत में चंद्रगुप्त का रूपांतर चंद्रगुप्त होगा। दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था, परंतु कौमुदी महोत्सव केवल चंद्रसेन का लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करने की बात कहता है। तीसरा, चंद्रसेन का वंश समूल नष्ट हो गया था, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम का वंश अनेक पीढ़ियों तक राज्य करता रहा। चौथा, चंद्रगुप्त प्रथम का पिता महाराज था, अतः उसका पुत्र कोई गोद कैसे ले सकता था। उधर चंद्रसेन साधारण परिवार का था। पांचवा, चौथी शताब्दी में मथुरा पर नागवंश का राज्य था, न कि यादव वंशी कीर्तिसेन का। छठवां, इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि वाकाटक वंश का राज्य कभी भी उत्तरी भारत पर था। सातवां, इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि समुद्रगुप्त कभी वाकाटक वंश का सामंत रहा था। कोई भी साक्ष्य बात सिद्ध नहीं करता कि गंगा वाकाटकों का राज्य चिन्ह थी। समुद्रगुप्त की व्याघ्रशैली मुद्रा पर राजा की उपाधि अवश्य मिलती है, परंतु इससे उसकी अधीनता सिद्ध नहीं होती। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की तांबे की मुद्राओं पर उसके लिए महाराज चंद्रगुप्त अथवा केवल श्री गुप्त उत्कीर्ण मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम की तलवार शैली की मुद्राओं पर भी केवल श्री कुमार लिखा मिलता है। संभवतः स्थान अभाव के कारण मुद्राओं पर कभी कभी महाराजा धीराज के स्थान पर छोटी उपाधियों का प्रयोग किया जाता था। आठवां, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित राजा रुद्रदेव आर्यावर्त का राजा था। वह दक्षिणापथ का वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य विस्तार, वायु पुराण का कथन है कि गुप्त वंशज इन सब जनपदों का भोग करेंगे। गंगा के किनारे किनारे प्रयाग, साकेत और मगध। कुछ लोग अनुगंगा का अर्थ गंगा के किनारे का बंगाल तक का प्रदेश मानते हैं। एलएल महोदय के मतानुसार यह वर्णन चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य का है। यदि यह सत्य है तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य में कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और संभवतः बंगाल का कुछ प्रदेश सम्मिलित था। यदि मगध और बंगाल के कुछ प्रदेश को श्री गुप्त का राज्य मान लिया जाए, जैसा कि कुछ विद्वानों का अनुमान है, तो फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वयं चंद्रगुप्त प्रथम ने जीता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से कौशाम्बी में मगवंशी राजा राज्य करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने इन्हीं मग राजाओं को हटाकर उत्तर प्रदेश पर अधिकार किया होगा। चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की मुद्रा, यह स्वर्ण मुद्रा है। इसके अग्रभाग पर कोट पैजामा टोपी आभूषण धारण किए हुए राजा खड़ा है। इसके सामने वस्त्राभूषण धारण किए हुए रानी खड़ी है। राजा संभवतः रानी को मद्रिका दे रहा है। मुद्रा की बाईं ओर चंद्रगुप्त और दाहिनी ओर कुमार देवी लिखा है। पृष्ठभाग पर हाथ में कमल पकड़े हुए लक्ष्मी का चित्र है, वसी पर बैठी दिखाई गई है। साथ में लिच्छविया लिखा हुआ है। एलएल महोदय का मत है कि यह मुद्रा अपने माता पिता के विवाह की स्मृति में समुद्रगुप्त ने निर्मित कराई थी। इस मत के पक्षपाती विद्वानों का प्रमुख तर्क यह है कि समुद्रगुप्त की गरुड़ ध्वज शैली की मुद्रा की अपेक्षा यह चंद्रगुप्त कुमार देवी की मुद्रा अधिक मौलिक है, अतः इसका निर्माण समुद्रगुप्त ने गरुड़ ध्वज शैली की मुद्रा के पश्चात ही कराया होगा। परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार यदि इस मुद्रा का निर्माण स्वयं समुद्रगुप्त ने किया होता तो इस पर उसका नाम अवश्य होता। इस मुद्रा पर जो नूतनता दिखाई देती है उसका बहुत कुछ कारण वह परिस्थिति है जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त कुमार देवी का विवाह हुआ था। लिच्छवियों के कदाचित इसी शर्त पर अपनी राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना स्वीकार किया था कि वह सम्मिलित राज्य की समानाधिकारिणी होगी। इस संयुक्त शासन को प्रदर्शित करने के लिए ही मुद्रा पर राजा रानी दोनों के चित्र और नाम अंकित कराए गए थे, और लिच्छवी कुमारी की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हुए उसके वंश का नाम भी अंकित कराया गया। रही वेशभूषा और वाहन के रूप में सिंह के चित्रण की बात, तो यह मौलिकता आकस्मिक भी हो सकती है।